ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पैसे न चुका पाने के कारण इलाज न हो सकने की अवस्था का अंत होना चाहिए, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। इलाज के लिए अस्पतालों में लाइन में खड़े रहने की परिस्थिति को समाप्त करने के विषय में संबद्ध निकायों के पदाधिकारियों से किया विमर्श। बांग्लादेश में बिजली निर्यात की बात। नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय समझौता चरण तक पहुंच चुकी है, नेपाल विद्युत प्राधिकरण का कथन। और इसराइल और गजा के बीच युद्ध विराम फिर से शुरू करने को इसराइल सहमत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि अस्पतालों में इलाज के लिए मरीजों को लाइन लगने की बाध्यता से छुटकारा देने के उपाय संबंध में क्या किया जाना चाहिए, इस पर राय ली। स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्या समाधान के उपाय और तत्काल किए जा सकने वाले सुधार विषयों में सिंह दरबार में हुए विचार विमर्श में प्रधानमंत्री ओली ने ये जिज्ञासा रखी थी। उन्होंने चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को अतिरिक्त उचित सुविधा मुहैया कराकर भी जरूरत के समय उनसे सेवा दिलवाने का आग्रह किया। इस बात का जिक्र करते हुए कि भर्ती किए बिना मरीज का इलाज शुरू न होने और पैसे न चुका सकने पर इलाज ही न हो सकने की अवस्था का अंत होना चाहिए, प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य बीमा को व्यावहारिक और क्रियान्वयन योग्य बनाने का आग्रह भी किया। बैठक में उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल, मुख्य सचिव, संबंधित सचिव लगायत सहभागी थे। विश्व आदिवासी दिवस आज नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेफिन ने संविधान प्रदत्त अधिकार आदिवासियों के विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र और स्वायत्त क्षेत्र के प्रावधान को क्रियान्वित कर जैसे नारे के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर घाटी में आदिवासी जनजाति समुदायों ने आज विभिन्न सांस्कृतिक झांकी लगाकर कार्यक्रम आयोजित किए। 30वें विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा कि विधिसम्मत रूप से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक स्रोतों का सदुपयोग होना जरूरी है। सामुदायिक वन दिवस 2081 के अवसर पर नेकपा एमाले के केंद्रीय वन तथा वातावरण विभाग द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में महासचिव पोखरेल ने ये बात कही। कार्यक्रम में वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही ठकुरी ने कहा कि पिछले समय में बढ़े हुए फर्नीचर के आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करने की जरूरत है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि रेडियो नेपाल को श्रोताओं का विश्वास जीतते हुए भरोसेमंद संचार माध्यम के रूप में खुद को स्थापित करना होगा। आज रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय पोखरा का निरीक्षण करने के दौरान मंत्री गुरुंग ने कहा कि रेडियो नेपाल को आवश्यक जनशक्ति, स्रोत और नीतिगत व्यवस्था के लिए मंत्रालय तैयार है। ये बताते हुए कि रेडियो नेपाल अभी भी पुराने ही आईन के तहत चल रहा है, उन्होंने कहा कि अब नई नीति बनाकर उसी के अनुसार संचालित किया जाएगा। पोखरा स्थित राष्ट्रीय समाचार समिति रासा कंडकी प्रदेश कार्यालय के निरीक्षण के दौरान संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि पत्रकारों के वृत्ति विकास में भी मंत्रालय का सहयोग रहेगा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप कुमार पौडेल ने कहा कि अस्पतालों में इलाज के लिए मरीजों को लाइन में लगने की बाध्यता से छुटकारा दिलाने के उपाय को लेकर सरकार दत्तचित्त होकर काम कर रही है। नेपालगंज स्थित भेरी अस्पताल में नवनिर्मित इंडोर भवन और एमआरआई सेवा का उद्घाटन करते हुए मंत्री पौडेल ने कहा कि मरीजों को बिना लाइन, बिना झंझट किस तरह इलाज उपलब्ध कराया जाए, इसके उपाय में सरकार जुटी है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिंग ने कहा कि 8 साल पहले 34 अरब 61 करोड़ रूपये के संचित घाटे में रहा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अब 47 अरब 41 करोड़ रूपये संचित नाफे में है। आज काठमांडू में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कार्यकारी निदेशक घिसिंग ने कहा कि प्राधिकरण की कुल संपत्ति 8 साल पहले 2 खरब 11 अरब रूपये की थी और आज वो 6 खरब 32 अरब रूपये की हो गई है। उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड और ट्रंक लाइन के उपभोग के बिल के सारे प्रमाण सुरक्षित हैं। ये दावा करते हुए कि डेडिकेटेड और ट्रंक लाइन के बिल में कोई अपचलन नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि सारे प्रमाण सुरक्षित हैं। घिसिंग ने बताया कि पिछले आर्थिक वर्ष में 1,94,00,000,000 यूनिट बिजली के निर्यात से 17,07,00,000,000 रुपए की आमदनी हुई है। ये बताते हुए कि जल्द ही बांग्लादेश में भी निर्यात होने जा रहा है, उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक गृह कार्य पूरा कर नेपाल, भारत और बांग्लादेश के निकायों के बीच त्रिपक्षीय समझौता अब होने के चरण में पहुंच चुका है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री परसों सावन 27 को नेपाल दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे विदेश सचिव मिश्री के भ्रमण के दौरान पारस्परिक हितों के विषयों में विचार विमर्श होंगे, ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय ने दी। हर साल श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाने वाली नागपंचमी देशभर में मनाई गई। आज के दिन नाग देवता के प्रति आस्थावान होकर घर के द्वार पर नाग की प्रतिमा या तस्वीर लगाकर लोग अपनी अपनी श्रद्धा और चरण अनुसार नाग देवता की पूजा करते हैं। नागपंचमी के अवसर पर आज काठमांडू के नाग पोखरी और टौदह, भक्तपुर की सिद्ध पोखरी समेत देशभर के नागडीहों पर विशेष पूजा अर्चना की गई। लगातार बारिश के कारण बीते जेठ 28 गते से अब तक देश के विभिन्न स्थानों में आई बाढ़ व भूस्खलन लगायत आपदाओं में 170 लोगों की हुई मौत की जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालय ने दी है। मृतकों में काठमांडू घाटी से 3, कोशिश से 25, मधेश से 6, बागमती से 31, गंडकी से 54, लुम्बिनी से 33, कर्णाली से 8 और सुदूर पश्चिम से 10 लोग शामिल हैं। इन हादसों में 203 लोग घायल हुए और 48 लोग लापता हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आज एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान तालिबान से जुड़े आतंकवादियों ने एक सुरक्षा चौकी को निशाना बनाया। हमले में 7 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई और 11 अन्य घायल हैं। अधिकारियों के मुताबिक हमला पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर स्थित तिराह घाटी में हुआ। हाफिज गुल बहादुर समूह ने इंटरनेट मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी ली। इस समूह ने फरवरी में तारिक अफरीदी समूह के साथ गठबंधन किया था। इसे तारिक गेदर समूह के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि यह समूह तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान TTP का सहयोगी संगठन है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पैसे न चुका पाने के कारण इलाज न हो सकने की अवस्था का अंत होना चाहिए, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का कथन। इलाज के लिए अस्पतालों में लाइन में खड़े रहने की परिस्थिति को समाप्त करने के विषय में संबद्ध निकायों के पदाधिकारियों से किया विमर्श। बांग्लादेश में बिजली निर्यात की बात। नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय समझौता चरण तक पहुंच चुकी है, नेपाल विद्युत प्राधिकरण का कथन। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आज एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।